जिनके श्रवण समुद्र समाना।
भगवान को रहने का प्रथम स्थान,
जिनके श्रवण समुद्र समाना, के ही तुम कहो गृह।
अब उनके हृदय में जाकर रहिए।
तीन के ही तुम कहो गृह,
जिनके हृदय जिनके श्रवण समुद्र समान। श्रवण का अर्थ होता है कान, प्रथम स्थान बता रहे हैं। कहते हैं जिनके कान समुद्र के समान, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जैसे अनेक प्रकार की नदियां समुद्र में जाती हैं, वैसे अनेक प्रकार की कथा हे प्रभु जो लोग अपने कान के माध्यम से सुनते रहते हैं, प्रभु जो लोग निरंतर आपकी कथा सुनते हैं, ऐसे कथा सुनने वालों के हृदय में आप जाकर रहिए। भगवान किसके घर पे रहते हैं, किसके घर जाते हैं? जो लोग निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की कथा यहां पर कहते हैं सुभग, बहुत सुंदर। भगवान कपिल देव कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। मेरी कथा कैसी है? भवंति रितकर्ण रसायणा कथा। हे मां देवती, मेरी कथा कर्ण को आनंद देने वाली और इस संसार को पार करने के लिए औषधि के समान है। जो व्यक्ति इसका रात दिन श्रवण करता रहता है, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, उनके जीवन में धीरे 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 करके भगवान के प्रति प्रेम गाढ़ प्रगाढ़ होते जाता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। जो लोग मेरी कथा सुनते हैं, इस संसार में मान लो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो बूढ़े हो गए हैं उनको कथा सुननी चाहिए। मान लो यदि मन में प्रश्न हो ये कथा किसको सुननी चाहिए। एक बार परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में जो लोग मरणासन्न हैं, जो लोग मरने वाले हैं, उन लोगों के लिए किम कर्तव्यम, क्या कर्तव्य है? अब मरने वाले तो हम सब लोग हैं। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हुए भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं तस्मात्। संसार में सबको एक ना एक दिन मरना है, तस्मात इसलिए सर्व आत्मना राजन। हे राजन, सभी जीवों के आत्मा के अंदर रहने वाले परमात्मा जो साक्षात हरि हैं और सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा सभी जगह पर रहने वाले हैं, ऐसे भगवान से हरि का श्री कृष्ण का श्रोतव्यम कथा सुननी चाहिए। संसार में रहने वाले मनुष्य के लिए सबसे बड़ा और सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वे लोग भगवान की कथा सुनें। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। कथा सुनना ये मनुष्य का प्रथम धर्म है। कथा सुनना ये नवदा भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति है, क्योंकि सभी भक्ति के अंग इस श्रवण के ऊपर आधारित है। जो लोग सुनते नहीं वो ठीक से भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्रवण से ही कीर्तन स्मरण इत्यादि भक्ति बढ़ती है। कथा सुननी चाहिए। तो मानो प्रश्न हो, यह कथा किससे सुननी चाहिए? तब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, पिबंत ये भगवत आत्मन सताम। पिबंत ये भगवत कथा सताम आत्मन। सताम का अर्थ होता है शुद्ध भक्त। भगवान की कथा शुद्ध भक्तों के मुख से पीनी चाहिए, सुननी चाहिए। क्यों? कथामृतम श्रवण पुटेशु संवृतम। यह कथा अमृत शुद्ध भक्तों के मुख से ही क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनेंगे तो ही पुनंतिते विषय विदूषिताशयम्। शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनकर ही हम पवित्र हो पाएंगे और संसार की आसक्ति से मुक्त हो पाएंगे। संसार में कुछ लोग बहुत कथा सुनते हैं, क्योंकि आज कथा सुनाने वाले सैकड़ों हो गए हैं, परंतु भक्तों उस व्यक्ति के मुख से ही कथा सुनो जो शुद्ध भक्त है। सताम शब्द आया है। जो शुद्ध भक्त नहीं है और उनके भक्तों से आप कथा सुनोगे तो विषय वासना कभी जाएगी नहीं, विषय वासना से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि बोलने वाला खुद विषय वासना में फंसा है। खुद 2, 5 या 10 लाख रुपए लिए बिना व्यासपीठ पर बैठता नहीं है, आज के कथाकार पैसे लिए बिना व्यासपीठ पर बैठते नहीं है। जब खुद संसार की यह तुच्छ धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाए, श्रोताओं को जगत की आसक्ति से कैसे मुक्त कर पाएंगे? कभी नहीं। शुद्ध भक्त के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। शुद्ध भक्त जिसे किसी भी प्रकार की कामना न हो, किसी भी प्रकार की इच्छा न हो, निष्काम। श्रील प्रभुपाद जी सदैव कहते थे, भगवान का नाम, भगवान की कथा औषधि के समान है, परंतु ये किसी शुद्ध भक्त के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त के मुख से यदि कथा नहीं सुनोगे, किसी अशुद्ध भक्त से सुनोगे, तो वो कैसा होगा? जैसे सर्प से स्पर्श हुआ दूध। दूध में बहुत गुण है, दूध बहुत गुणकारी है, परंतु सर्प उसे स्पर्श कर लेता है तो वह जहर हो जाता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं, हमारे वो भी ऐसे ही राम कथा करते हैं, ऐसे ही भागवत कथा करते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, तो दूध में जहर हो तो दूध ऐसा ही दिखता है, सफेद ही दिखता है, परंतु बहुत खतरनाक होता है। उनमें थोड़ा भी सिद्धांत अलग हो गया। आप कभी अंधेरी से निकले हो, दादर की ओर जाओगे, तो दादर से 2 रास्ते होते हैं, दादर स्टेशन से एक हार्बर लाइन में जाता है, एक वेस्टर्न लाइन। वो दूसरे रास्ते में जाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, रेलवे ट्रैक का एक खांचा बस इतना यहां पर होता है, तो वो ट्रेन धीरे 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 करके वेस्टर्न से हार्बर में चली जाती है। वैसे कथा बोलने वाले में थोड़ा भी सिद्धांत 19-20 हो गया, वेस्टर्न लाइन से हार्बर लाइन चले जाओगे, वहां भगवान नहीं मिलेंगे, वहां भौतिक भोग मिलेंगे। इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुननी चाहिए। मान लो यदि हम कथा नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्वनवीड वराह उष्ट खरे संस्तुत पुरुष पशु। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो लोग भगवान की कथा सुनते नहीं है, अब मैं नहीं कहता हूं, श्लोक आपके सामने है तो ही बोलूंगा। कहते हैं नयत कर्ण पयत, अपने कानों से जो लोग गदाग्रज गद के अग्रज भगवान श्री कृष्ण और राम की कथा नहीं सुनते हैं वह कौन है? श्वन, वह कुत्ते हैं। विडवराह, वह मल खाने वाले सूकर है। उष्ट, जो कथा नहीं सुनते हैं वह ऊंट है। पर आगे कहते हैं जो कथा नहीं सुनते खरे वह गधे हैं। और इतना ही नहीं, संस्तुत पुरुष पशु, उनका मनुष्य जीवन पशु की समान हो जाता है। हालांकि एक श्लोक की व्याख्या 7 दिन तक हो सकती है। सुखदेव गोस्वामी ने गधा, ऊंट, शुकर और कुत्ता क्यों कहा, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन सिद्धांत है। जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट ही क्यों कहा? ऊंट इसलिए कहा क्योंकि ऊंट पेड़ के पत्ते खाता है और उसको पेड़ के पत्ते खाने में बहुत रस मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, उसे बहुत सुख मिलता है। वो सोचता है कि वाह कितने सुंदर, कितने मीठे पत्ते हैं। परंतु वो मूर्ख जानता नहीं है वो पत्ते मीठे, रेगिस्तान में कुछ मीठा नहीं होता है। वो पत्तों के साथ कांटे हैं और पत्तों के साथ वो कांटा खा रहा है और कांटा उसके मुख में लग रहा है, अपना ही खून खा रहा है, चूस रहा है और सोचता है कि ये पत्ते से कितना रस मिल रहा है। वैसे इस जगत में रहने वाले लोग, जो लोग कथा नहीं सुनते हैं, वे सोचते हैं जगत की कथाओं में, संसार में बहुत सुख है, आनंद है। परंतु वह आनंद ऊंट के पत्ते जैसा है, वास्तविक आनंद नहीं है। इसलिए गोस्वामी ने भी कह दिया जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने कानों के माध्यम से भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, उसके कान सर्प के रहने के बिल के समान है, खड्डे मात्र है, कुछ काम के नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि ठीक है कथा सुनेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन कितनी सुने? क्योंकि वाल्मीकि ने कह दिया कि भगवान उन्हीं के घर पर रहेंगे जो कथा सुनेंगे, तो भाई कितनी सुने? 45 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, कितनी सुने? तब यहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समान है, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। सरी माने नदिया, जैसे समुद्र में अनेक नदियां प्रचंड वेग से आती हैं, मिलती हैं, तो समुद्र की 2 विशेषता है। पहली तो वह समुद्र कभी ना नहीं कहता है। कितनी भी नदी आती है, निरंतर हजारों वर्षों से समुद्र में नदी आ रही है, परंतु एक बार भी नदी को ना नहीं कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब पानी बढ़ गया है मेरे में, नहीं। और दूसरी, वह नदी कैसी भी हो, वेलकम, स्वागत, परंतु नदी होनी चाहिए। देखिए समुद्र की विशेषता। और तीसरा, कभी ना नहीं कहते हैं और कभी बस नहीं कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, अब ओवरफ्लो हो गया, अब ज्यादा नहीं। समुद्र कभी ओवरफ्लो नहीं होता है। वैसे अपने कान को जो समुद्र की तरह बना लेता है, कैसे? समुद्र का पहला गुण क्या? नदी कथा सुनने में, नदी को कभी समुद्र ना नहीं कहता है, वैसे कथा सुनने में कभी ना नहीं कहना है। और कैसी भी नदी हो, वेलकम, कैसे भी कथाकार हो, कैसे भी भक्त हो, कथा करने वाले कैसे भी हो, वेलकम, परंतु वह नदी होनी चाहिए, परंतु वह शुद्ध भक्त होने चाहिए। और बस नहीं कहता है, वैसे जो लोग निरंतर नित्य कथा सुनते रहते हैं और कभी भी जीवन में बस नहीं कहते हैं, उनके घर पे जाकर भगवान श्री रामचंद्र रहते हैं निरंतर। कथा में रुचि उत्पन्न किए बिना और कोई रास्ता नहीं है भक्तों, यदि भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही सुत गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को कह दिया, धर्म स्व अनुनिष्ठ पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। आप अपने जीवन में कितने भी बड़े कर्तव्य का पालन करते हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितने भी बड़े कर्तव्य निभाते हो, लेकिन यदि भगवान राम और कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, धर्म स्व अनुनिष्ठ पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पाद येत यदि रतिम। जीवन में आप जो भी कर रहे हो श्रम एव ही केवलम, सब किया हुआ मात्र श्रम है, श्रम। इसलिए भगवान के कथा में रुचि होनी चाहिए, निरंतर सुनते रहना चाहिए। जैसे पृथु महाराज के सामने भगवान साक्षात प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए, तब पृथु महाराज कहते हैं, न काम ये नाथ तदप्य हम क्वचित न यत्र युष्म चरणाम्बुजा सव। हे नाथ कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो, तो प्रभु आपको देना ही है तो 10,000 कान दे दो, क्योंकि एक कान, ये दो कान से आपकी कथा सुनने में बहुत कमी लग रही है, 10,000 कान दे दो, 10,000 कानों से आपकी कथा निरंतर सुनता रहूंगा, निरंतर सुनता रहूंगा। इस प्रकार निरंतर कथा सुनते। कुछ लोग अभी मन में सोच लिए होंगे अब तो कथा सुनेंगे, परंतु कुछ प्रश्न होता है, प्रभु जी सीडी में सुनेंगे तो चलेगा? ऐसे डायरेक्ट जाकर आमने सामने वक्ता के साथ बैठकर तो कष्ट होता है, घर से जाना, समय निकालना। सीडी में तो क्या है, हाथ में ही वक्ता का मुंह होता है, जब चाहे तब स्टॉप कर दिया, पॉज कर दिया। बोले प्रभु सीडी में सुनेंगे तो चलेगा? नहीं। देखिए बहुत सुंदर ऋतु महाराज कहते हैं, महताम अंतरद्रयात मुखच्युत विदस्व कर्ण अच्युतम एव मे वरह। भगवान के भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त जब भगवान की कथा करते हैं तो वो जो शब्द है, शब्द वर्ड, वो शब्द उस भक्त के हृदय से स्पर्श होकर निकलते हैं। सिद्धांत बता रहे हैं, जब कोई भक्त कथा सुना रहे हैं तो वो शब्द हृदय से निकलते हैं, फ्रॉम हार्ट, क्योंकि वह शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान उनके हृदय में अवतरित हो चुके हैं। इसलिए जब शुद्ध भक्त कथा करते हैं तो हृदय में बैठे हुए भगवान के चरण की पराग रज को लेकर वह शब्द उसके मुख से निकलता है और वह पराग रज उड़ती है और श्रोताओं के कान के माध्यम से हृदय में चली जाती है। वो पराग रज सीढ़ी में से नहीं उड़ती है। इसलिए भागवत कथा सुनने के लिए समय निकाल निकाल कर जाना चाहिए। सीढ़ी में कथा सुनना ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बंद कर देना, लेकिन मैं तो विशेषता बता रहा हूं। सीढ़ी से कथा सुनोगे ज्ञान मिलेगा, परंतु जब तक वक्ता के सामने बैठकर कथा नहीं सुनोगे कृपा नहीं मिलेगी। ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है भक्तों, कृपा बड़ी चीज है। ज्ञान तो बड़े बड़े लोगों में होता है, परंतु जब तक कृपा नहीं होती है तब तक वह ज्ञान जीवन में अप्लाई नहीं होता है। इसलिए आलस न करते हुए घर से निकलकर जहां जाकर भागवत कथा में बैठना चाहिए, ताकि वह शुद्ध भक्त का प्रभाव हमारे हृदय में आए। इस प्रकार जो लोग निरंतर सीढ़ी में नहीं, जा जाकर आयोजन में, कथा में, वीकली प्रोग्राम में, प्रभुपाद जी के बनाए हुए इस्कॉन के जितने भी सेंटर हैं, मंदिरों में जो लोग जा जाकर कथा सुनते हैं, उनके घर पर भगवान विराजते हैं, उनके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। इस प्रकार प्रथम स्थान बता दिया, आप लोग समझ गए। पहला स्थान भगवान कहाँ रहते हैं, सबको याद रहना चाहिए, जहां पर जो लोग निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं और निरंतर कथा सुनने के बाद भी बस नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना बस प्रभु जी अब बस करो। भगवान भी कहेंगे कि विष्णु दूत अपने दूतों को बस करो, उसको मत लाओ, बस करो अब। तो इस प्रकार अब दूसरा स्थान बता रहे हैं प्रभु, अब दूसरा स्थान सुनिए। पहला स्थान तो बता दिया, जो लोग आपकी कथा सुनते हैं उनके घर पर आप जा सकते हैं, उनके हृदय में आप जा सकते हैं। बोले अब दूसरा स्थान, मल्टीपल चॉइस है, आपके पास भी कथा सुनो या तो दूसरा कोई दूसरा चांस बता रहे हैं।
लोचन चातक जिन करी राखे, लोचन चातक जिन करी राखे,
सभी लोग
निरही सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल हो सुतारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक,
उनके हृदय में जाकर रहो,
तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहू बंधु सिय सहू बंधु सिय सहर घुनायक,
तीसरा स्थान बताते हुए कहते हैं लोचन चातक जिन करी राखे। पहले कान का बताया, वह आंख का बता रहे हैं। रही दरस जलधर अभिलाषे, निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। हे प्रभु, जो लोग नित्य निरंतर आपके रूप का दर्शन करते हैं उनके घर या उनके हृदय में जाकर रहो। भगवान का दर्शन करना यह बहुत बड़ी भक्ति है। जो लोग भगवान का दर्शन करते हैं वास्तव में भगवान उनके हृदय में बस जाते हैं, उनके घर पर भगवान चले जाते हैं, मुड़कर नहीं देखते हैं। आपने वृंदावन में बांके बिहारी जी का नाम सुना होगा। एक बार एक भक्त का विवाह हुआ और पति पत्नी का दोनों का विवाह हुआ और विवाह करके बांके बिहारी जी के मंदिर में गए। पत्नी प्रथम बार वृंदावन में आई बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए और दोनों बांके बिहारी के सामने खड़े हैं और एक नजर से दर्शन कर रहे हैं। जीवन में प्रथम बार भगवान के स्वरूप को उस स्त्री ने देखा, देखते ही रह गई। जैसे आंखों से भगवान के रूप को पीती जा रही हैं, पीने लगी। और उस स्त्री ने मन में यह कामना की कि ये प्रभु मेरे साथ मेरे घर पर यदि रहने लगे तब तो मैं धन्य धन्य हो जाऊं। भक्तों, इतिहास साक्षी है, उस समय उस स्त्री के भगवान के देखने के कारण भगवान मंदिर से उतर गए और उस पति पत्नी के पीछे पीछे चलने लगे। पति पत्नी आगे जा रहे हैं, भगवान चलते चलते, क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन किया था। जो लोग भगवान का दर्शन करते हैं भगवान उनके घर पर चले जाते हैं। परंतु हुआ ऐसा कि पति पत्नी जा रहे थे, भगवान भी रास्ते से जा रहे थे, और वहां पर पुजारियों ने जाकर देखा मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान को कौन लेकर गया, कौन लेकर गया? कोई चुरा लेकर गया? सारे मन सारे पुजारी इत्यादि सब लोग जाकर देखे तो भगवान उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान को रास्ते में रोक लिया, सभी पुजारियों ने प्रणाम किया, दंडवत किया, और प्रभु को कैसे भी करके रिझा कर रोक लिया। और फिर से बांके बिहारी को मंदिर में स्थापना की गई। परंतु उस दिन से पुजारियों ने ठान लिया कि कोई भी भक्त कैसा भी आएगा, एक दृष्टि से हमारे बांके बिहारी के सामने देखने नहीं देंगे। यदि कोई निरंतर इस बांके बिहारी के सामने देख लिया तो ये तो चलकर उतर जाते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि ये बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा बंद किया जाता है, खोला जाता है, नंदगांव में भी बार बार पर्दा बंद, क्यों? क्योंकि वो वहां उसको मंदिर में मजा नहीं आता है। भगवान को वो आरती और पूजा में उतना आनंद नहीं आता है जितना प्रेम करने वाले भक्तों के साथ लाड़ करना, दुलार करना, और उनकी गाली सुनना, और उनके साथ रोटना मनाना में आता है। उतना जय जगदीश में नहीं आता, भगवान निकल जाते हैं। परंतु किसके वहां जाते हैं? जो लोग निरंतर भगवान को देखते रहते हैं, निरंतर भगवान अद्भुत। भगवान का रूप ऐसा है कि व्यक्ति मोहित हो जाए। जो लोग भगवान को देखते हैं, उसी के साथ साथ वाल्मीकि जी एक शरत कह रहे हैं। शरत क्या है? निदर ही सरित सिंधु सर्व भारी। निदर ही मारे निरादर, केवल भगवान के रूप को ही देखना, अन्य दूसरे के रूप को निरादर करना, ठुकरा देना। संसार की जो तड़क भड़क है, संसार के जो भौतिक रूप है, उस रूप को ठुकरा कर केवल भगवान को जो लोग देखते हैं, और कैसे? लोचन चातक जीन करी राखे, चातक के समान। भक्तों आपने चातक का स्वभाव जाना होगा। चातक के सामने मान सरोवर का जल होता है, पीता नहीं है। गंगा जैसा पवित्र पानी, लेकिन वह पीता नहीं है। जब तक बारिश की ऋतु में स्वाति नक्षत्र में, और वह भी बादल से गिरे हुए डायरेक्ट बूंद को अपने मुख में ग्रहण न करे, वह मर जाता है। परंतु वह अन्य कोई पानी जल ग्रहण नहीं करता है। वैसे ही जो भक्त केवल भगवान के रूप को ही ग्रहण करें, अन्य सारे रूप को छोड़ दें, एकमात्र भगवान के रूप को ही देखने का आग्रह करें, उनके घर पर भगवान रहते हैं। ये तो हर महीने टाटा स्काई का 350 चुकाने वाले के घर पर भगवान नहीं जाते हैं। पैसे देकर भी, पैसे दे देकर जो टीवी खरीदते हैं, टीवी कोई खराब वस्तु नहीं है। ये टीवी आप देख रहे हो ना, 46 इंच का टीवी है, खराब दिख रहा है आपको? इसका इस्तेमाल ठीक से होना चाहिए। टीवी बहुत अच्छी वस्तु है, लेकिन इस्तेमाल उसका गलत हो रहा है। इसी टीवी में आप रामायण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं। इसी टीवी में अभय चरण शिल प्रभुपाद जी की लीला को आप देख सकते हैं। तो वास्तव में देखना है तो भगवान को देखने का आग्रह होना चाहिए। जो लोग निरंतर भगवान को देखते रहते हैं वो भगवान को पा जाते हैं। और भगवान को न देखकर संसार के दृश्य को देखते हैं, भगवान नहीं मिलेंगे ये तो ठीक है, परंतु वो जीवन में दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करेगा। भक्तों ये हमारी आंखें जो हैं लेंस का काम करती हैं। एक कैमरा सामने है, ये कैमरे में जो लेंस है वो आंख के समान है, और उसमें जो रील चल रही है वो मन के समान है। हम हमारी आंखों से जो जो देख रहे हैं वह सारे दृश्य हमारे मन में फिट होते जा रहे हैं और वह दृश्य का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरा पड़ता है। बहुत अजामिल की कथा आपने सुनी है, कितना सुंदर कितना सुशील वेद पाठी ब्राह्मण था, परंतु एक दृश्य बुरा देख लिया संसार के अव्वल नंबर का पापी हो गया। आंखों के द्वारा बुरा दृश्य नहीं देखना। और आज तो माया का प्रभाव तो देखिए, हमारे इस मुंबई जैसे शहरों में एक एक मिनट के अंतर में ऐसे ऐसे विकृत दृश्य, ऐसे नंगे चित्र लगाए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उसमें मोहित हो जाए। इसे अवॉइड करना चाहिए, कभी भी ऐसे बुरे दृश्य को नहीं देखना चाहिए। बुरे दृश्य का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब देखिए, आपने पिछले रविवार को भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना था ये याद नहीं है, भगवान का क्या रूप स्वरूप याद नहीं है, लेकिन 10 साल पहले कोई बुरा दृश्य देखा था वह आज भी तरोताजा है। क्यों? क्योंकि बुरे दृश्य का प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसलिए इन आंखों से बुरा दृश्य न देखते हुए भगवान का दृश्य, भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जो लोग अपनी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बरहा इते ते नयने नराणाम। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि जो लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपनी आंखों से राम और कृष्ण का दर्शन नहीं करते हैं उनकी आंख आंख नहीं है, उनकी आंख मोर के पंख में रहने वाले वो तो गोल क्या कहते हैं उसे, आंख नहीं है खट्टे हैं। तो इस प्रकार आंख भगवान ने आंख दी है, इस आंखों की सार्थकता तब है जब इन आंखों के द्वारा हम भगवान का दर्शन करें, भगवान को निरंतर देखते रहे। ये दूसरा स्थान। पहला, जो लोग भगवान की कथा निरंतर सुनते हैं और उबते नहीं है उनके घर पर जाते हैं, और दूसरा जो लोग भगवान का निरंतर दर्शन करते रहते हैं उनके घर पर जाते हैं। अब तीसरा स्थान बता रहे हैं,
जस तुमार मानस विमल हंस निजी हा जासु मुक्ता हल गन गुन चुनई राम बसहु हियकासु।
हे प्रभु, इस संसार में जिसकी जीवा आपका गुणगान करती है, जो अपनी जीवा से आपकी कथा बोलती है, जो लोग अपनी जीवा के द्वारा आपकी कथा बोलते हैं, आपका नाम लेते हैं, आपका गुणगान करते हैं, उनके घर पे जाकर आप रहिए, उनके हृदय में रहिए। और दृष्टांत देते हुए कहते हैं हंसिनी, हंसिनी आप जानते हैं, जैसे हंस मानस विमल, मान सरोवर में बड़े बड़े हंस होते हैं, मान सरोवर भगवान के यश के समान है और हंस भक्त के समान है, जिह्वा के समान है, मुक्ताहल भगवान के गुणगान है, भगवान के गुण मोतियों के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं जिनकी जिह्वा हंसिनी बनकर, जैसे हंसिनी मान सरोवर में बैठकर मोती के दाने को चुगती रहती है, वैसे जिसकी जिह्वा भगवान के गुण को बोलती रहती है उनके घर पे जाकर हे प्रभु आप रहो, उनके घर पर। हंस में नीर क्षीर विवरण गति होती है। हंस जो होता है वो सदैव अच्छी चीज को ही ग्रहण करता है, कभी कभी उस मोती को चुनते चुनते चना का दाना भी आ जाता है, मूंग का दाना भी आ जाता है, परंतु हंस उसे छोड़ देता है, केवल मोती को ही चुगता है। हंस में एक गुण होता है, हंस को आप दूध और पानी ऐसे मिलाकर दे दो तो वो दूध दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। आज का दूध तो हंस ही पी सकते हैं, पानी वाला। वैसे हमें हंस की तरह बनना है। कैसे? संसार के जो सांसारिक बातें हैं उसे छोड़कर एकमात्र भगवत कथा, भगवत चर्चा, भगवान के गुण और रूप की कथा ही करती रहनी चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जीवा सती दादुर केव सुतः। जो लोग अपनी जीवा से भगवान का गुणगान नहीं करते हैं उनकी जीवा दादुर के समान। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। मेंढक को आप जानते हैं, श्री प्रभुपाद उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में यह बात कहते हैं। बारिश की ऋतु में मेंढक टर टर करते रहते हैं, है ना? मेंढक बारिश की ऋतु में टर टर करते रहते हैं, सांप उसे ढूंढ लेते हैं। वैसे सांप को कान नहीं होता है। सांप को कान कभी देखा आपने? नहीं। सांप का भोजन होता है मेंढक। वैसे सांप कभी मेंढक को ढूंढ नहीं सकता है, परंतु ये मेंढक अपने सही टर टर करते हैं और सांप को आगमन दे रहे हैं, वेलकम, आइए खाइए। जैसे मेंढक ये अपनी आवाज के द्वारा सांप को आमंत्रित करता है, वैसे इस जगत के लोग भगवान की चर्चा, भगवान की कथा को छोड़कर यदि केवल सांसारिक कथा करते हैं तो काल रूपी सर्प को वो आगमन कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। काल उसे निगल जाएगा जो लोग भगवान की कथा बोलते नहीं हैं। इसलिए भगवान उन्हीं के घर पर जाते हैं जो लोग भगवान की कथा बोलते हैं, गाते हैं, सुनते हैं। गाने वालों के वहां भगवान जाते हैं। गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया। रासलीला के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण आए गोपियों के साथ, रासलीला की। रासलीला करते करते भगवान रासलीला से अदृश्य हो गए। तो अदृश्य हो गए, गोपियों ने कृष्ण को ढूंढा, बहुत ढूंढा, गहरे वन में चली गई, बहुत कुछ। परंतु जब तक गोपियों ने गोपी गीत नहीं गाया तब तक भगवान उनके सामने प्रकट नहीं हुए। जब तक भगवान के गुणगान को हम गाएंगे नहीं तब तक भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे। ये भगवान ने कहा है कि नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, ना हम बसामि वैकुंठ, और न तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, नारद में मैं वहीं पर रहता हूं। यत्र गायंती मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त मेरे गुण रूप और नाम का कीर्तन करते हैं वहीं पर मैं सदैव उपस्थित रहता हूं। भक्तों, पद्म पुराण में लिखा है कि यदि आप सोते सोते भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके बाजू में आकर बैठ जाते हैं सुनने के लिए। यदि आप बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने आकर खड़े रह जाते हैं। यदि आप खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने नाचने लगते हैं, और यदि आप नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हो तो वह नाचने वाले भगवान कूद कर आपके हृदय में चले जाते हैं। अब आप सोच लीजिए आपको कैसे भगवान का नाम लेना है, सोते बैठते, खड़े खड़े या नाचते हुए, हैं कैसे? इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें नाचना सिखाया है। कभी भी भगवान का कीर्तन करो तो किसी के मातम में गए ऐसे नहीं, राम बोलो भाई, राम राम श्री राम। भगवान का नाम लेना चाहिए नाचते हुए, गाते हुए, जैसे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का नाम लेते थे बिल्कुल पागलों की तरह नाचते थे। एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा, जब तक भगवान के धाम में जाने के लिए पृथ्वी से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बिना सर्टिफिकेट लिए आप भगवान के धाम में नहीं जा सकते हो। तो मैंने पूछा, ये हमारे शिक्षा गुरु थे, मैंने पूछा तो प्रभु जी वो सर्टिफिकेट देगा कौन? बोले संसार के जो भौतिक लोग हैं ना वो देंगे, ये सर्टिफिकेट भक्त लोग नहीं देंगे। ये जो भौतिक लोग हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट जब आपको नहीं देंगे तब तक आप बोला सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट, बोले पागल का सर्टिफिकेट। जब तक संसार के भौतिक लोग आपको पागल न बोल दे तब तक भगवान के धाम में नहीं जा सकते हो। सत्य बात है, पागल एक बार निकल जाना चाहिए, पागल हो गया है, पागलों की तरह नाच, बस हमें तो और नाचना है, वाह सर्टिफिकेट मिला, यहां से मिल गया। और यह प्रभुपाद जी ने सिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया नाचते हुए। और कुछ लोग कहते थे कि आप क्यों नाच रहे हो, तो हमारी तरह जवाब नहीं देते थे कि आप लोग मूर्ख हो, मूर्ख। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से बड़े प्यार से समझाते थे। प्रबोधानंद सरस्वती ने पूछा कि तुम भी सन्यासी मैं भी सन्यासी, हम दोनों एक गुरु के शिष्य है, और तुम इस प्रकार नाचते हुए भगवान का नाम। अरे भगवान का नाम तो एक जगह पर बैठकर लेना चाहिए, संसार में कई लोग कहते हैं भगवान का नाम बैठकर लेना चाहिए, बोले मैं बैठकर ही ले रहा था। और उन्होंने कहा कि देखो तुम सन्यासी हो, सन्यासियों को चाहिए वेद शास्त्र का पठन पाठन करे, अध्ययन करे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं हमारे गुरुजी के पास गया था और गुरुजी के पास जाकर कहा गुरुजी मुझे शिक्षा दीजिए, वेदों का वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। गुरुजी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु तुम बहुत मूर्ख हो, तुम्हारे बुद्धि में ये वेद शास्त्र कभी टिकेंगे नहीं। वे कहते थे गुरु मोहे मूर्ख जानी करील शासन, गुरु ने मुझे मूर्ख समझा और गुरु जी ने मुझे कहा कि आप वेद शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, समस्त वेद शास्त्र का सार भगवान का नाम है, भगवान का नाम जपते रहो आपका इसी में उद्धार होगा। बोले उस दिन से मैं भगवान का नाम जपने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं ये महामंत्र जपता गया वैसे वैसे संसार से विरक्त होता गया, संसार को भूलने लगा और पागलों की तरह होने लगा। तब मैं फिर से गुरुजी के पास जाने गया और कहा कि किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, हे गोसाई गुरुजी ये आपने कैसा मंत्र दे दिया, इस मंत्र में न जाने कैसी शक्ति है, जपीते जपीते नाम करील पागल, मैं ये जितना जितना जपते जा रहा हूं उतना पागल होते जा रहा हूं। बोले अच्छा तुम जितना जप रहे हो उतना पागल होते जा रहे हो, अब ये मंत्र जो है पूरा पूरा तुम पर असर कर चुका है, अब निश्चित तुम भगवान के धाम में जाओगे, सर्टिफिकेट दे दिए, लेना चाहोगे, नाचना होगा सर्टिफिकेट के लिए। तो जिनकी जीवा निरंतर भगवान का नाम जपती रहती है उनके घर पर उनके हृदय में भगवान बसते हैं। तीसरा स्थान, अब वाल्मीकि जी चौथा स्थान बता रहे हैं।
प्रभु पर साध सुचि सुभग सुजासा, प्रभु पर साध सुचि सुभग सुजासा, सादर जासु लहै नित नासा, सादर जासु लहै नित नासा, प्रभु पर साध सुचि सुभग सुवासा, प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहै नित नासा, सादर
जासु, काम की बात आ रही है,
सादर जासु लहै नित नासा,
अब कुछ काम की बात आ रही। भगवान को रहने का चौथा स्थान बताते हुए कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा सादर जासु लहई नित नासा। नासा, नासा का अर्थ होता है नासिका। पहले कान का बताया, फिर जिह्वा का बताया, अब नासिका। देखिए, भगवान को अपने घर पर बुलाने के लिए बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, ऐसा ऐसा नहीं कि हमारे पास इतना रुपया होगा, इतना कुछ होगा, ये कुछ होगा, नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है। पहला क्या बताया, भगवान को प्राप्त करने के लिए कान चाहिए, है कि नहीं आप लोगों के पास है? अच्छे अच्छे है। फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवा चाहिए, है कि नहीं, लंबी लंबी है ये बाजू तो। और भगवान को प्राप्त करने के लिए अब तीसरा क्या था, आंख चाहिए, ये भी है। यहां सूरदास जी तो कोई है नहीं, होंगे तो एक दो। और भगवान को प्राप्त करने के लिए अब नाक चाहिए, ये तो सबके पास है, नहीं तो जिएंगे कैसे है? नाक। बोले प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, जो अपने नाक के द्वारा भगवान के भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी पुष्पमाला पुष्प अत्तर ये सब भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान को तुलसी के ऊपर जो मंजरी होती है, मंजरी चढ़ाई जाती है। वास्तव में वो मंजरी जो है वो तुलसी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। वास्तव में तुलसी के ऊपर आप मंजरी को रहने देते हो तो वो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत कष्ट होता है तुलसी को। जैसे आपके सिर पर 500 क्विंटल का वजन रख दिया गया हो, उतना दर्द तुलसी को होता है जब वो मंजरी होती है। जब उसे आप निकाल देते हो तुलसी देवी खुश हो जाती है, और फिर वह मंजरी आप भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे। शास्त्र में वर्णन है, आप एक और करोड़ों रुपये भगवान के चरणों में रखो, एक और मंजरी रखो, करोड़ों रुपये को ठुकरा देंगे, भगवान मंजरी को ग्रहण कर लेंगे। मंजरी बहुत प्रेम, भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान को खुश करना चाहते हो ना, मंजरी चढ़ा दीजिए। और फिर भगवान के चरणों से जब वो मंजरी भगवान ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद उसे तदीय वस्तु कहा जाता है। तदीय, उसे ग्रहण करने से और उसको सूंघने से भगवान प्राप्त होते हैं। देखो, सूंघने से भगवान मिलते हैं, नासिका से। पुष्प, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाए हुए आप उसे सूंघते हैं, यह है इसे भक्ति कहते हैं। भगवान को पुष्पमाला चढ़ाइए और उस पुष्पमाला को धारण करके रखें, उसे भक्ति कहते हैं। भगवान की चढ़ाई हुई पुष्पमाला हम सबको धारण करके रखनी चाहिए। आप कहोगे प्रभु जी आपने क्यों निकाल दी, मुझे बहुत पसीना हो रहा था, नहीं तो ये तो मैं कभी ना निकालता, साक्षात राधा रास बिहारी जी ने भेजा है। परंतु ये गुण मैंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के दो परम आचार्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में देखा, और परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज में, दोनों दोनों मेरी आंखों से देखा। एक बार मैं पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ बैठा था, और महाराज जी के गले में राधा रास बिहारी जी का ऐसा ही एक हार था। एक ब्रह्मचारी एक डोनर को लेकर आए, महाराज जी के चरणों में प्रणाम कराया, आशीर्वाद महाराज जी ने दिया, और फिर जब वापस लौट रहे तो ब्रह्मचारी ने कहा महाराज जी अपना हार उनको दे दो। पहली बार महाराज जी ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। ब्रह्मचारी ने कहा महाराज जी डोनर है हमारा, दे दो। महाराज ने कहा नहीं दूंगा। बोले ब्रह्मचारी डोनर है। महाराज ने कहा मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नहीं दस दे दूंगा, लेकिन ये हार की एक पत्ती भी जमीन पर गिरनी नहीं चाहिए। ये साक्षात राधा रास बिहारी का महा महा प्रसाद है, यदि एक पत्ती भी नीचे गिर गई तो यह अपराध मुझे लगेगा, इसलिए मैं हार नहीं दे रहा हूं। देखिए कितनी सूक्ष्म बुद्धि है। भगवान प्राप्त हो चुके हैं इसे। जब इस प्रकार से सूक्ष्म बुद्धि एक छोटे छोटी वस्तु को भी अपने जीवन में गंभीरता से ग्रहण करते हैं, उसके घर पर उनके हृदय में भगवान रहते हैं। और एक बार ये मैंने हमारे गुरु महाराज में भी देखा, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को हार पहनाया गया, पहन कर रखा, अपने घर पर गए, बिस्तर में सो गए, फिर भी हार पहना हुआ। पूरी रात भर उन्होंने हार पहन कर रखा, वे हार पूरी रात भर रहा उनके सिर पर। सुबह उठकर पूछा, महाराज जी आप इतने नींद में थे हार निकालना भूल गए? बोले नहीं, मुझे पता था। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, ये भगवान का निर्माल्य है, भगवान का पवित्र हार है। भगवान में और भगवान के इस हार में कोई अंतर नहीं है, मैं इस हार को कैसे त्याग सकता हूं, इसलिए मैं हार पहनकर ही सो गया। ये है श्रद्धा। और हम लोग तो नेताओं की तरफ पहनाया नहीं और निकाला नहीं है, ऐसे करके ऐसे निकाल देते हैं। भगवान का हार ये धारण करके रखना चाहिए। भागवत में अष्टम स्कंद में कथा है, भगवान का हार जो निकाल देता है बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इंद्र ने निकाल दिया था, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, स्वर्ग से च्युत हो जाओगे। तो इस प्रकार भगवान का हार, भगवान के चढ़ाया हुआ पुष्प और भगवान को चढ़ाया हुआ अत्तर, कुछ लोग बहुत मारते हैं और लिफ्ट से चले जाते हैं तो आधा घंटा तक सुगंध आती रहती है। बोले कोई बात नहीं, आप लोग लगाओ, लेकिन भगवान को चढ़ाया हुआ लगाओ अत्तर, सुगंधित पदार्थ भगवान को। हमारे भगवान भी कोई साधु सन्यासी या बाबा जी नहीं है, बड़े रसिक हैं, लगाओ बहुत लगाओ उनके शरीर पर है? भगवान खुश होते हैं, कोई त्यागी नहीं है हमारे भगवान। परंतु ध्यान रहे कि उसमें अल्कोहल ना हो, शुद्ध अत्तर होना चाहिए। भगवान को लगाया हुआ अत्तर यदि हम लगाते हैं तो ये भी भक्ति है, भगवान कितने कृपालु है, अत्तर लगाना भी भक्ति है, तब तो ये भक्ति करने जैसी है। तो इस प्रकार जो लोग इस प्रकार से अपनी नाक का उपयोग, नासिका का उपयोग भगवान की तदीय वस्तु को सूंघने में करते हैं, उनके घर पे भगवान रहते हैं। और यदि परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी को भागवत में, जो लोग अपनी नासिका का उपयोग ऐसा नहीं करेंगे, केवल कपाल भाती भस्त्रिका लिए ही करेंगे, तो तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री विष्णु पद्या मनुज तुलसिया स्वच्छ सवो यस्तु न वेद गंधम। आया श्लोक इसमें आया, अद्भुत टीवी है, आता रहता है सब, मेरा सब पोल खोलता रहता है। तो श्री विष्णु पद्या, भगवान विष्णु के चरणों के मनु तुलसिया, तुलसी फूल अत्तर इत्यादि, यदि कोई व्यक्ति नवेद गंधम, यदि कोई इसका गंध लेता नहीं है, तो वह कौन है? जीवत शवो, शव के समान, वह जिंदा लाश है, वह मनुष्य नहीं है, वह मुर्दा लाश, वह लाश सांस ले रही है। तो इस प्रकार भगवान को रहने के चार स्थान बताए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार भगवान की कथा सुनते रहिए। मैं बारंबार कहता हूँ, भगवान की कथा में बहुत सुख है, आनंद है, रस है। भक्तों, कई बार प्राय कृष्ण भक्तों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हमारे आराध्य भगवान राधा कृष्ण हैं, राम कथा क्यों सुने? प्राय हमारे इस्कॉन के भक्तों में ज्यादा प्रश्न होता है। ये क्या शुरू कर दिया राम कथा, कृष्ण कथा होनी चाहिए। हमारे आराध्य भगवान राधा कृष्ण है युगल। वास्तव में कृष्ण भक्ति जो है वो बहुत हायर वस्तु है। कृष्ण की भक्ति शुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले लोग कर सकते हैं, और कृष्ण भक्ति वह कर सकता है जो अपने पद से ऊपर उठा हुआ हो। कम से कम कृष्ण की भक्ति करने के लिए एटलीस्ट हमें मनुष्य बनना होगा। बिना मनुष्य बने हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते हैं। और ये राम कथा जो है इस संसार के पशु जैसे जीव को मनुष्य बनाने के लिए है। पहले राम कथा को सुनकर, राम कथा को बारंबार सुनकर हम मनुष्य तो बने, हम एक सोफिस्टिकेटेड एक अच्छे आदमी तो बने। कैसे एक पुत्र होता है, कैसे पिता, कैसे भाई होता है। राम कथा को सुनकर जब हम एक अच्छे मनुष्य बनेंगे तब जाकर कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने में हम समर्थ होंगे। नहीं तो लंबी छलांग लगाने में कोई गिर भी जाता है। तो भगवान रामचंद्र के जो चरित्र हैं वास्तव में जीवन में उपाध्याय हैं। कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण ने जो लीला की उस लीला का श्रवण करना है, परंतु राम ने जो किया वह करना है। आप कृष्ण ने जो किया वह करने जाओगे संसार के लोग मारेंगे और जेल में डाल देंगे, चोरी करोगे, गोवर्धन धारण करोगे। कृष्ण की कथा सुनकर हृदय पवित्र होता है, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है, परंतु प्रेरणा नहीं मिलती। परंतु भगवान राम की कथा सुनकर प्रेरणा मिलती है जीवन में कि हमें हमारे कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए। ये प्रेरणादायक प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र ने जो किया वह करना चाहिए और कृष्ण ने जो कहा वह करना चाहिए। आज संसार में सब लोग उल्टा कर रहे हैं, सीधा उल्टा हो रहा है। राम ने जो किया वो करते नहीं है और कृष्ण ने जो कहा वो नहीं करते हैं, कृष्ण ने जो किया वो करना चाहते हैं गोपियों के साथ रास। भगवान भगवान है, भगवान का अनुकरण हम नहीं कर सकते हैं। परंतु भगवान ने राम अवतार क्यों लिया, मैं बात आई है इसलिए कह दूं। भागवत के पंचम स्कंद में किम पुरुष का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी किम पुरुष का वर्णन करते हैं जहां पर हनुमान जी महाराज नित्य विराजमान है। बजाओ, नित्य विराजमान है। तो वहां पर हनुमान जी महाराज भगवान राम को स्तुति करते हैं, वह अद्भुत स्तुति है। मर्त्य वतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्ष वदा एव न केवलम विभो। भागवत के पंचम स्कंद में कभी खोल कर देखिए रामायण का वर्णन है। कुछ लोग कहेंगे पंचम स्कंद में रामायण, रामायण तो नौवें स्कंद में है। पंचम स्कंद में 3 अध्याय में रामायण है भागवत के, और वहां पर हनुमान जी महाराज भगवान राम को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ है। अरे रावण को मारना होता तो भगवान अपने धाम में बैठकर न मारते। जो अपने एक आंख के इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, एक छोटे से रावण को मारने के लिए वहां से यहां आएंगे कभी नहीं। आपका अवतार किस लिए, मर्त्य अवतार तु ही मर्त्य शिक्षणम। आपका अवतार इस संसार में जो मरण धर्मा जो मनुष्य है ऐसे मनुष्य को अपने आचरण से शिक्षा देने के लिए हुआ है। भगवान राम ने आपनी आचरित प्रभु जीवेर सिखाया, अपने आचरण से एक पति को कैसे रहना चाहिए भगवान राम ने सिखाया, एक पुत्र को कैसे रहना चाहिए भगवान राम ने सिखाया, एक भाई को कैसे रहना चाहिए भगवान राम ने सिखाया, और एक भक्त को कैसे आचरण करना चाहिए भगवान राम ने सिखाया। नहीं तो वाल्मीकि को पूछने की क्या जरूरत थी। वेदा हम समती तानी, तीनों काल के बारे में, सभी जीव के बारे में भगवान जानकर बैठे हैं, फिर भी हाथ जोड़कर मुनिवर के चरणों में प्रणाम करके पूछते हैं मैं कहाँ रहूं। भगवान ने सिखाया कि मैं भगवान होकर भी इस संसार में ऋषि मुनि और साधुओं को प्रणाम करता हूं और उनके मुख से कथा सुनता हूं। तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारा धर्म है कथा सुनना, भगवान ने सिखाया। ये उपदेश देने के लिए भगवान ने राम अवतार धारण किया। भगवान ने सिखाया गुरु धारण कर भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। रामायण हमें जीना सिखाती है। रामायण सुनकर हम उस पात्र के बन जाते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर हम कृष्ण की भक्ति कर पाए। और इसी बात को ध्यान में रखकर ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने जू मंदिर में राधा रास बिहारी के बाजू में भगवान राम लक्ष्मण और जानकी को खड़ा रखा है। प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे कि समाज का जो लेवल है बहुत गिर चुका है। आज समाज में घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं। जब तक राम के चरित्र को समाज के सामने रखा नहीं जाएगा तब तक समाज में शांति नहीं आ सकती है। और आप घर में झगड़ा हो रहा है और उसमें कृष्ण भक्ति हो नहीं सकती है। भगवान राम के इस चरित्र से जीवन में सुख शांति आएगी, भगवत भक्ति आएगी। इसलिए भगवान राम के इस चरित्र को सुनिए, उपदेश को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। अब कुछ स्थान बाकी रह गए हैं, हम आपको कल बताएंगे। और फिर कल भरत और राम का संक्षिप्त में मिलाप होगा, मिलेंगे। और वहां पर भी लखनलाल हैं क्रोधित होंगे कि अरे ये भरत अभी भी कुछ बच गया है तो लेने के लिए आ रहा है। भैया बस अब मुझे तुम्हारी आज्ञा भी नहीं चाहिए, मैं भरत को मार डालूंगा, मैं जा रहा हूं मारने के लिए। बहुत सुंदर प्रसंग आएगा आगे। और सीता और अनसुया का संवाद, और कल हनुमान और विभीषण का संवाद, और परसों काकभूषणी और गरुड़ जी का संवाद, ये सब आएगा। बहुत उपदेश, बहुत लीला, अनेकों कथा आएगी। आप सब आते रहिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।